एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
यीशु तेरा
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तेरे पास आते हैं पिता। हमारे मनों और हृदयों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तेरे वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे और मेरे संगो पिता तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ दे, ताकि मैं तेरा पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा तेरे वचनों को बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का संवाद का शीर्षक है मसीह में बढ़ने के प्रमाण चिन्ह। मसीह में बढ़ना परिपक्वता में बढ़ना है, ताकि दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर की इच्छा को प्रतिबिंबित करें व मसीह की राह पर चलें। इस परिपक्व जीवन एवं इसके निरंतर विकास के चिन्हों के क्या प्रमाण हैं? सूची को समाप्त न करते हुए हम इस तरह के सात प्रमाण चिन्हों पर विचार कर सकते हैं। पहला है आत्मा का जीवन। यीशु ने निकोदिमस से कहा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना 3:5। पवित्र आत्मा की पुनर्जीवित करने वाली शक्ति के बिना मसीह जीवन की शुरुआत भी नहीं हो सकती। पवित्र आत्मा के बिना हम अपने कार्यों एवं जो जीवन व्यतीत करते हैं उसके वर्तमान एवं अनंत परिणामों की गहराई को नहीं जान सकते। हमारे जीवन में यह आत्मा की उपस्थिति व रूपांतरण शक्ति ही है जो हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाती है। रोमियो 8:14। आत्मा के द्वारा ही मसीह हम में बना रहता है। पहला यूहन्ना 3:24। आत्मा के अंतर्निवास के साथ एक नया जीवन आता है, नया इस तरह कि वह सोच विचार व कार्यों के पुराने तरीकों एवं वे संबंध जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध थे उन्हें अस्वीकार कर देता है। नया इस तरह भी कि वह हमें एक नई सृष्टि बनाता है। धार्मिकता में बढ़ने के लिए पाप से मुक्त, छुड़ाए गए व मेल किए गए, रोमियो 8:1-6, एवं यीशु के स्वरूप को महिमा से महिमा तक प्रतिबिंबित करने के लिए 2 कुरिन्थियों 3:17-18। जब परमेश्वर का आत्मा हृदय पर कब्जा कर लेता है तब यह जीवन का रूपांतरण कर देता है। पापमय विचारों को दूर किया जाता है, बुरे कामों को त्याग दिया जाता है, क्रोध ईर्ष्या एवं संघर्ष का स्थान प्रेम नम्रता एवं शांति ले लेती है, उदासी का स्थान प्रसन्नता ले लेती है, वह चेहरा स्वर्ग के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। आशीष तब मिलती है जब विश्वास द्वारा आत्मा स्वयं को परमेश्वर को समर्पित करती है। तब वह शक्ति जो मानव आंख नहीं देख सकती है, परमेश्वर के स्वरूप में एक नए प्राणी की सृष्टि करती है। आत्मा हमें परमेश्वर के वारिस एवं मसीह के सहवारिस बनाती है। यदि हम उसके साथ दुख उठाएं, तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे, रोमियो 8:17। इस प्रकार आत्मा का जीवन आत्मिक कार्य की बुलाहट है। पाप के पुराने तरीकों को अस्वीकार करें एवं वर्तमान जीवन में मसीह के कष्टों के भागीदार बनें, ताकि हम उसके साथ भविष्य की महिमा के भागीदार बन सकें। पौलुस इस आत्मा सशक्त जीवन का वर्णन गलातियों 5:19-23 में करता है, जो शरीर के कार्यों, बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, बैर, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे को अस्वीकार कर देगी, और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता व संयम को आलिंगन कर उन्हें उत्पन्न करेगी। दूसरा है प्रेम व एकता का जीवन। मसीह जीवन एकता का जीवन है। एक ओर परमेश्वर से मेल मिलाप का जीवन एवं दूसरी ओर व्यक्ति के साथी मनुष्य के साथ मेल मिलाप का जीवन। मेल मिलाप संबंधों में आई दरार को चंगा करने का कार्य है, और इन संबंधों में दरार पड़ने का मूल कारण पाप है। पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है, जैसा कि कहता है यशाया 59:2, और मानवता को असंख्य गुटों जैसे कि जातीय, प्रजातीय, लिंग, राष्ट्रीयता, रंग, जाति आदि में बांट दिया है। यीशु का सुसमाचार पाप एवं उससे संबंधित सभी दरार कारकों की समस्याओं को हल करता है एवं मेल मिलाप व नई एकता की व्यवस्था की सृष्टि करता है। यीशु ने अपनी महायाजकीय प्रार्थना में कहा था कि सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है, यूहन्ना 17:20-21। यीशु का संपूर्ण छुटकारे का कार्य एवं उसके सुसमाचार की शक्ति उसके प्रेम के प्रमाण की मांग करती है, और एकता जिसे छुड़ाए गए समुदाय के सदस्यों को बांधना चाहिए। जैसे जैसे वह व्यक्ति बढ़ता व परिपक्व होता जाता है, मेल मिलाप का तेजस्वी सत्य प्रेम एवं एकता मसीही जीवन के दोनों व्यक्तिगत एवं सामूहिक अभिव्यक्ति में ज्यादा से ज्यादा चमकता जाता है। मसीही विकास में प्रेम कारक सुसमाचार के लिए अनोखा है। यीशु इसे नई आज्ञा कहता है, यूहन्ना 13:34 में, परंतु नवीनता प्रेम को संदर्भित नहीं करती है, बल्कि प्रेम की वस्तु का संदर्भ देती है। लोग प्रेम करते हैं, परंतु वे प्रेम करने योग्य लोगों से प्रेम करते हैं, वे अपनों से प्रेम करते हैं, परंतु यीशु ने एक नया कारक पेश किया, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, अर्थात जैसा कि विश्वव्यापी, जैसा कि बलिदानी एवं जैसा कि पूर्ण यीशु का प्रेम है, वैसा ही हमारा प्रेम भी होना चाहिए। नया प्रेम कोई बाधा नहीं खड़ा करता है, यह सम्मिलित है, यह शत्रु को भी प्रेम करता है। पड़ोसी से प्रेम करने का आदेश संशोधन के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता है। हम किस से प्रेम करें इसका चुनाव नहीं करते हैं, हमें सबसे प्रेम करने के लिए कहा जाता है। हमारा पड़ोसी हर वह व्यक्ति है जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। हमारा पड़ोसी हर वह मनुष्य है जो विरोधी द्वारा जख्मी व घायल किया गया है। हमारा पड़ोसी वह प्रत्येक जन है जो परमेश्वर की संपत्ति है। सच्चा प्रेम प्रत्येक चेहरे में परमेश्वर की संभावित अव्यक्त या वास्तविक छवि को देखता है। एक प्रगतिशील परिपक्व मसीही के पास इस प्रकार का प्रेम होगा जो वास्तव में सभी मसीही एकता का आधार है। तीसरा है एक अध्ययन का जीवन। विकास के लिए भोजन एक मूलभूत आवश्यकता है। किसी भी जीवित जीवाणु के कार्य करने के लिए पर्याप्त व निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसा ही आत्मिक विकास में है, परंतु हम अपना आत्मिक भोजन कहाँ से प्राप्त करें? मुख्यतः दो स्रोतों से, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके, उसके साथ निरंतर संपर्क में बने रहने से एवं प्रार्थनामय जीवन को विकसित करने से। आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर के वचन की महत्ता को और कहीं इतना नहीं सिखाया गया जितना कि साफ तौर से स्वयं यीशु के शब्दों द्वारा। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, मत्ती 4:4। यीशु इस बात का एक उत्तम उदाहरण देता है कि उसने कैसे शैतान का सामना शास्त्र के शब्दों के साथ किया। उसने कहा, लिखा है। ऐसा ही हमारे संग है। भजनकारी कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। भजन संहिता 119:12। इसमें प्रेरित द्वारा दी गई प्रतिज्ञा को जोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, इब्रानियों 4:12। जब एक मसीही शैतान के आक्रमणों से बचने के लिए आत्मा की इस तेज दोधारी तलवार का उपयोग करता है, तब वह युद्ध के विजयी पक्ष में है। विश्वासी आत्मिक विकास में आने वाली प्रत्येक बाधा को काटकर घुसने के लिए सशक्त है कि गलत से सही को समझ सके, ताकि सही के पक्ष में एक अटल चुनाव किया जा सके एवं मसीह की आवाज व शैतान की कानाफूसी के बीच अंतर को जान सके। यही है जो वचन को आत्मिक विकास के लिए एक स्थिर हथियार बनाता है। चौथा है एक प्रार्थना का जीवन। परमेश्वर हमसे अपने वचन बाइबल के द्वारा बातचीत करता है। उसकी इच्छा को जानना आत्मिक प्रगति का हिस्सा है, उसके साथ संपर्क बनाने का हिस्सा। परमेश्वर के साथ संपर्क बनाने एवं उसमें बढ़ने का एक और पहलू प्रार्थना है। यदि परमेश्वर का वचन रोटी है जो हमारी आत्मा का पोषण करती है, तो प्रार्थना श्वास है जो हमारी आत्मा को जीवित रखती है। प्रार्थना परमेश्वर से वार्तालाप करना, उसकी आवाज को सुनना, समर्पण में घुटनों के बल आना और परमेश्वर की शक्ति के पूर्ण शक्तिकरण में खड़ा होना है। पौलुस मसीही जीवन एवं विकास में प्रार्थना को इतना महत्वपूर्ण मानता है कि वह 6 मूल सिद्धांतों का वर्णन करता है। निरंतर प्रार्थना करो, आत्मा में गिड़गिड़ा के प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो, जागते हुए प्रार्थना करो, दृढ़ता के साथ प्रार्थना करो एवं सभी प्रेरितों के लिए प्रार्थना करो, इफिसियों 6:18। प्रभावकारी प्रार्थना आत्मत्याग, आत्मा से परिपूर्ण मध्यस्थता, दूसरों की आवश्यकताओं के लिए निवेदन है, तब भी जब हम पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के लिए उसके वफादार साक्षी होते हुए प्रार्थना करते हैं। एलन वाइट कहती है, प्रार्थना आवश्यक कर्तव्यों में से एक है, इसके बिना आप एक मसीही यात्रा नहीं बनाए रख सकते या उन्नत करती है, मजबूती करती है एवं महान बनाती है, या आत्मा की परमेश्वर के साथ बातचीत है। पांचवा है एक फलदायक जीवन। उनके फलों से यीशु ने कहा, तुम उन्हें पहचान लोगे, मत्ती 7:20। मसीह विकास में फल उत्पन्न करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। अनुग्रह द्वारा उद्धार को अक्सर आज्ञाकारिता एवं फल उत्पन्न करने से इनकार समझा जाता है, या बाइबल की सत्यता से दूर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। यीशु ने दृढ़ता से कहा, मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ, यूहन्ना 15:10। आज्ञा पालन से पहले प्रेम होना चाहिए। यीशु ने यह भी कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यूहन्ना 14:15। यीशु अपने शिष्यों के लिए एक प्रेम आधार की उम्मीद करता है। तुम मुझ में बने रहो, यीशु कहता है, जैसा मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते, यूहन्ना 15:4। इसलिए फल लाना, आज्ञा पालन करना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना आत्मिक विकास के आवश्यक चिन्ह हैं। फल का नहीं होना मसीह में नहीं बने रहने को दर्शाता है। छठा है एक आत्मिक युद्ध का जीवन। मसीही शिष्यता सहजता की यात्रा नहीं है। हम एक युद्ध में लगे हैं जो वास्तविक एवं खतरनाक है। जैसा पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, इफिसियों 6:12-13 में हम पढ़ते हैं। इस युद्ध में हमारे विरुद्ध अलौकिक शक्तियों को लगाया गया है। जिस प्रकार प्रभु के स्वर्गदूत उसके अनुयायियों को बुराई से बचाने एवं आत्मिक विकास करने में उनका मार्गदर्शन करने में लगे हैं, उसी प्रकार गिराए गए स्वर्गदूत हमें शिष्यता की मांगों से दूर करने की गहरी साजिश रच रहे हैं। हमारी आध्यात्मिक युद्ध अपनी प्रचंडता पर पहुंची हुई है। इसलिए पौलुस कुछ प्रबल क्रियात्मक शब्दों का उपयोग करता है, कहता है, बांध लो, स्थिर रहो, ले लो, पहन लो, इफिसियों 6:12-13। इसलिए पौलुस हमें कहता है कि हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले, इफिसियों 6:12-18 में मिलता है, कि हम यीशु में शैतान पर विजय हासिल कर लें। और सातवां है आराधना, गवाही यों आशा का एक जीवन। मसीही विकास एक शून्य स्थान में नहीं होता है। एक ओर यह छुड़ाए गए लोगों के समुदाय के भीतर घटित होता है, दूसरी ओर गवाह की तरह उस समुदाय में जिन्हें छुड़ाए जाने की आवश्यकता है। जितना अधिक हम आराधना, अध्ययन या संगति में बढ़ते हैं, उतना ही अधिक हमें सेवा करने व गवाही देने के लिए कहा जाता है। मसीही विकास सेवा कार्य में विकास की मांग करता है, मत्ती 20:25-28, और गवाही के प्रति विकास भी। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, यीशु ने कहा, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, यूहन्ना 20:21। हम जो अनुग्रह और आशा प्राप्त किए हैं, यीशु कहता है कि हम जाकर दूसरों से भी बांटें। परमेश्वर आपके संग रहे और आपको बहुतायत से आशीष दे कि आप यीशु में एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम अपने मनों को खोलते हैं, हमारे मनों में तेरा पवित्र आत्मा का वास दे कि हम खुशी और आनंदित जीवन बिता सके। हम सबों को तेरा वचन से बहुत से आशीष दे, हमें तेरा रास्ता सुन और दया से प्रार्थना करते हैं।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudaveentist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।